السلام علیکم. آج منگل ہے، فروری کی 7 تاریخ، پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. ترکیہ اور شام میں زلزلے سے متاثر عمارتوں کے ملبے سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک دونوں ملکوں میں ہلاکتوں کی تعداد 5,000 ہو گئی ہے. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق دنیا بھر سے امدادی ٹیمیں امدادی سامان اور رضاکاروں کے ہمراہ ترکیہ پہنچ رہی ہیں. ترکیہ کے حکام کے مطابق ملک بھر میں اب تک 3,381 افراد ہلاک اور 20,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب شام کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حکومت کے زیر اثر علاقوں میں 769 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 1400 سے زیادہ زخمی ہیں. شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں زلزلے سے 450 اموات ہوئی ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان نے زلزلے سے ہونے والے نقصان پر 7 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ترک ہم منصب کو فون کیا اور انہیں مدد کی پیشکش کی. وائٹ ہاؤس کے مطابق ترکیہ میں امدادی سرگرمیوں میں مدد کے لیے امریکہ نے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں روانہ کر دی ہیں. وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی ہدایت پر ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے خصوصی طیارہ سامان لے کر روانہ ہو گیا ہے. وزیراعظم نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. انہوں نے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا. بھارت نے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے 100 تربیت یافتہ اہلکار ترکیہ بھیجے ہیں. بھارت کی وزارت خارجہ کے مطابق ڈاکٹر، طبی عملہ اور ادویات بھی روانہ کی جائیں گی. جنوبی کوریا نے ترکیہ میں زلزلے کے بعد امدادی سرگرمیوں میں معاونت کے لیے 60 ارکان پر مشتمل عملہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے. جنگ زدہ ملک شام نے اقوام متحدہ اور اس کے رکن ممالک سے اپیل کی ہے کہ زلزلے کے بعد امدادی کاموں میں شام کی مدد کی جائے. شام کے حکام کے مطابق اس کو زلزلہ متاثرین کے لیے صحت کی بنیادی سہولیات، پناہ کے لیے خیمے اور خوراک درکار ہے. شام میں اقوام متحدہ کے نمائندے کے مطابق سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اقوام متحدہ اس مشکل صورتحال میں شام کی ہر ممکن مدد کرے گا. شام میں ایک جانب جہاں حکام ہلاکت خیز زلزلے کے بعد امدادی سرگرمیوں میں مصروف تھے، وہیں ایک جیل سے خطرناک قیدیوں کے فرار کا واقعہ پیش آیا ہے. پیر کو جب شام اور ترکیہ میں زلزلہ آیا تو عین اسی وقت ترکی کی سرحد کے نزدیک واقع ایک شامی جیل میں قیدیوں نے بغاوت کر دی. اس دوران جیل سے 20 قیدی فرار بھی ہو گئے ہیں، جن کا تعلق شدت پسند تنظیم داعش سے بتایا جاتا ہے. جیل میں لگ بھگ 2,000 قیدی موجود ہیں. پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ملک کو درپیش مشکلات، بالخصوص دہشت گردی اور اقتصادی بحران پر بات چیت کے لیے بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں بتایا کہ وزیراعظم بدھ کی صبح انقرہ روانہ ہوں گے اور ترکیہ اور شام میں زلزلے کی تباہی، جانی نقصان پر افسوس اور ترکیہ کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں گے. اس سے قبل سیاسی قیادت کی ساہم بیٹھک کی تاریخ منگل 7 فروری کے بجائے جمعرات 9 فروری کر دی گئی تھی. پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کرنے کے بعد ان کی تدفین کر دی گئی ہے. سابق صدر کے نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. فوج کی نمائندگی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کی. اس کے علاوہ سابق آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی، قمر جاوید باجوہ، جنرل ریٹائرڈ آسم سلیم باجوہ، جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا और ज़हीर इस्लाम भी नमाज जनाजा में शरीक थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फरूक नसीम, वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक, साबिक गवर्नर सिंध मुइनुद्दीन हैदर और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल और दीगर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मलीरकेंट में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मैयत को कराची कैंटोनमेंट के फौजी कब्रस्तान में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। इंसानी हकूक के बैन अलावामी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि बैन अलावामी मालियाती फंड IMF को पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर माशी तौर पर पसमानदा अफराद के तहफ्फुज़ के लिए काम करना चाहिए और ऐसे इस्लाहाती इकदामात को कम से कम करना चाहिए जिनसे इंतहाई कमजोर लोगों को मजीद नुकसान पहुंचने का खतरा हो। ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट एशिया डायरेक्टर पेट्रिशिया गॉसमैन ने कहा है कि लाखों पाकिस्तानी गुरबत के गर्दाब में फंस चुके हैं और वो अपने बुनियादी समाजी और माशी हकूक से महरूम हैं। पाकिस्तान को 1975 के बाद महंगाई की बुलंद तरीन सतह का सामना है जिसमें मजीद इजाफा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF ईंधन की कीमतों में इजाफे, सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने और टैक्सों का दायरा वसी करने समेत करप्शन के खिलाफ सख्त इकदामात का मुतालबा कर रहा है। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में मुबैना तौहीन मजहब के मामले पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद मुश्तैल शहरियों ने थाने का घेराव कर लिया और उस शख्स को मारने के लिए थाने पर हमला किया। पुलिस की तरफ से शदीद आंसू गैस की शेलिंग के बाद मुलजिम और उसके बेटे को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके उनके खिलाफ तौहीन मजहब की दफा 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रावलपिंडी पुलिस की तरफ से दर्ज FIR में अमजद पराचा नामी शख्स ने हामिद इलाही पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया जिसके मुताबिक दौरान गुफ्तगू ऐसे कलिमात अदा किए गए जिनसे तौहीन मजहब हुई है। अमजद पराचा का कहना था कि मुलजिम ने अहादीस की कुतुब से इनकार किया और तौहीन आमेस कलिमात अदा किए। पाकिस्तान में माजी में भी कई मरतबा तौहीन मजहब के मामले पर हजूम के हाथों कई अफराद हलाक हो चुके हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन क़िबला अयास कहते हैं कि यह रियासत का काम है कि जब किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगे तो उसकी मुकम्मल तहकीक के बाद उसे सजा दी जाए, लेकिन ऐसे फैसले आम लोगों और हजूम के हवाले नहीं किए जा सकते। मालूमाती वेबसाइट विकिपीडिया को वजीर आजम शाहबाज शरीफ के हुक्म पर दोबारा बहाल कर दिया गया है। वजारत इतलात के मुताबिक पाबंदी हटाने का नोटिफिकेशन वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह के दस्तखतों से जारी हुआ। पाबंदी हटाने की सिफारिश करने वाली कमेटी कानून और इंसाफ, माशी और सियासी उमूर और इतलात नशियात के विफाकी वजरा पर मुश्तमिल थी। वजारती कमेटी ने अपने इजलास में मामले का जायजा लेकर करार दिया कि विकिपीडिया एक मुफीद मालूमाती वेबसाइट है जिससे तालिब इल्म, महक़िक़ीन और माशरे के दीगर तबकात इस्तेफादा करते हैं। विकिपीडिया को रवा हफ्ते 48 घंटों से डिग्रेड करने के बाद मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया था जिस पर हजारों तालिब इल्मों समेत इंटरनेट पर आज़ादी इजहार पर काम करने वालों ने तशवीश का इजहार किया था। पाकिस्तान में माजी में यूट्यूब समेत कई वेबसाइट्स को तौहीन आमेज़ मवाद की वजह से बंद किया जा चुका है। अफगानिस्तान के लिए रूस के खसूसी एलची जमीर काबलोफ ने काबुल में अपना सिफारतखाना बंद करने से मुतालिक बास मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए कहा है कि रूस का अफगानिस्तान में अपना सिफारतखाना बंद करने का कोई इरादा नहीं है। इससे कबल ये इतला मिली थी कि कई अरब और मगरबी मालिक के हुकाम ने काबुल में अपने सिफारती मिशन बंद करने का फैसला किया है। तालिबान ने सऊदी अरब के सिफारतकारों के आर्जी तौर पर इनखला की तस्दीक की है, लेकिन अफगानिस्तान से दीगर सिफारतकारों के इनखला पर कोई तबसरा नहीं किया। खबरसा एजेंसी तास ने पीर के रोज रूसी वजारत खारजा के एशियाई शोबे के डायरेक्टर जमीर काबुलॉफ के हवाले से बताया कि जब उनसे पूछा गया कि क्या रूस का ऐसा कोई मंसूबा है, तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और 15 फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट्स और प्रोडक्शन कंपनियां तालिबान हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि वो फ्रांसीसी अफगान रिपोर्टर मुर्तजा बहबूदी को रिहा करे जो एक माह से काबुल में कैद है। उनका कहना था कि हम मुर्तजा बहबूदी की हिरासत के बारे में 30 दिन तक खामोश रहे, जो फ्रांसीसी और अफगान दोहरी शहरियत का हामिल एक सहाफी है और अफगान दारुलहुकूमत काबुल की एक जेल में बंद है। लेकिन आज हम दुनिया को बता रहे हैं कि उसे एक माह कबल 7 जनवरी को काबुल में गिरफ्तार किया गया था। उसकी रिहाई के लिए हमने पिछले महीने से मुख्तलिफ फोरम्स पर हर मुमकिन कोशिश की है इस उम्मीद पर कि उसे रिहा कर दिया जाएगा, मगर हुकूमत ने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया है। अफगानिस्तान के इंसानी हकूक के आज़ाद कमीशन ने एक बयान में तालिबान हुकूमत से कहा है कि वह तालिबान हुकूमत की वजारत दाखिला के साबिक तर्जुमान की साबिक अहलिया अलीहा दिलावरी को रिहा करे। तालिबान ने अपने इख्तदार संभालने के बाद IAHRC को तहलील कर दिया था और फिलहाल ये कमीशन बैरून मुल्क से काम कर रहा है। बयान के मुताबिक तालिबान ने वजारत दाखिला के साबिक तर्जुमान सैयद खोस्ती की साबिक अहलिया अलीहा दिलावरी को तकरीबन 80 दिनों से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से मुतालिक एक मामले पर पीर को समाप्त करते हुए कहा कि भारत जैसे सेकुलर मुल्क में मजहब की बुनियाद पर नफरत अंगेजी और जराइम की कोई गुंजाइश नहीं है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दो रुकनी बेंच ने कहा कि जब नफरत अंगेज जराइम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर एक ऐसा माहौल पैदा होता है जो बहुत खतरनाक होता है, लिहाजा हमारी जिंदगियों से नफरत अंगेजी का खात्मा होना चाहिए। इंसानी हकूक के कारकुन जहां एक तरफ मुल्क में बढ़ती हुई मुबैना नफरत अंगेजी की मजम्मत करते हैं, वहीं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स का खैर मकदम भी करते हैं। दरियासना इतवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू तंजीमों की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले एक प्रोग्राम में मुबैना तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी की गई। पुलिस ने इस मामले में ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया है, जबकि राजस्थान के बाड़मेर मुसलमानों के खिलाफ मुबैना नफरत अंगेज तकरीर करने पर योगा गुरु रामदेव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। हुकूमत का मौकिफ यह है कि वो मजहब की बुनियाद पर नफरत अंगेजी के खिलाफ है। अमरीका के सदर जो बाइडन मंगल को कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करेंगे। इस सालाना खिताब में अमरीकी सदर मुल्क को दरपेश मसाइल की निशानदेही और आइंदा की तरजीहात का ऐलान करेंगे। मुबसरीन के मुताबिक इस साल स्टेट ऑफ द यूनियन में अमरीका की माशी सूरत हाल, गन वायलेंस के बढ़ते हुए वाकयात और दाएं बाजू के इंतहा पसंद अनासिर से जमहूरियत को लाहिक खतरात के साथ साथ यूक्रेन जंग का मामला सरे फहरिस्त रहने की तवक्को है। अमरीका के नायब सदर कामला हैरिस इस माह म्यूनिख की सालाना सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। प्रेस सेक्रेटरी क्रिस्टन एलन की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि हैरिस 16 से 18 फरवरी तक जर्मनी में अपने क्याम और सालाना फोरम में ट्रांस एटलांटिक इत्तेहाद और अज़्म का मुजाहरा करने के लिए शिरकत करेंगी। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने पीर के रोज अक़्वामे आलम को मुतनब्बिह किया है कि उन्हें खदशा है कि रूस और यूक्रेन के तनाज़े में मजीद शिद्दत दुनिया को एक वसी तर जंग की तरफ ले जा रही है। उन्होंने न्यूयॉर्क में सिफारतकारों को बताया कि मजीद कशीदगी और खूनरेजी के इम्कान बढ़ते जा रहे हैं और अमन के इम्कान कम होते जा रहे हैं। यूक्रेनी हुकाम ने खबरदार किया है कि रूस यूक्रेन पर अपने हमले का एक साल मुकम्मल होने के करीब अब तक हासिल की गई कामयाबियों को दिखाने के लिए हमले की तैयारी कर रहा है। बरतानिया की वजारत दिफा ने मंगल को कहा कि रूस मुमकिन तौर पर यूक्रेन में जारहाना कार्रवाइयों को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा है और ये कि उसका हदफ یقینی طور پر ڈونیٹس اوبلاس سمیت باقی ماندہ یوکرین کے زیر قبضہ حصوں پر قبضہ کرنا ہے۔ برطانیہ کے جائزے میں کہا گیا ہے کہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ روس کو آنے والے ہفتوں میں اتنی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ جنگ میں وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل کر لے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو یورپی یونین کے رہنماؤں کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے پیر کو بتایا کہ وہ اس ہفتے برسلز میں ہو سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے قومی رہنماؤں کی یورپی کونسل کے صدر چارلز مشل نے زیلنسکی کو مستقبل کے سربراہی اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت کی دعوت دی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فردن فردن مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔